पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र से दूर जाने का फैसला करती है। इस अध्याय में रूही उस व्यक्ति से मिलती है जिसने अनाथाश्रम खरीदा है। रुद्र उसे बताता है कि वो अनाथों को तभी रहने देगा जब वो उसके साथ रहेगी। रूही इनकार करती है। रुद्र एक टीवी पर दिखाता है कि अनाथों के साथ क्या हो रहा है और रूही को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है। दिशा रूही को खोजने जाती है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 80। अब आगे रुद्र की सारी बातों को सुनने के बाद और टीवी में उन पुलिस वालों को इस तरह उन लोगों को मारता देख, साथ साथ उनकी गंदी नज़र उन लड़कियों पर देख, रूही को समझ में आ जाता है कि रुद्र जो कह रहा है बिल्कुल सही है। और वो ये भी नहीं चाहती थी कि सिर्फ उसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा सफ़र करें और इतना दुख सहे। ये सब सोच रूही रुद्र की तरफ देखती है तो पाती है कि रुद्र की नीली आँखें सिर्फ उस पर ही टिकी हुई हैं, जिसमें रूही अपने लिए उस जुनून को साफ देख सकती थी। और अब तक उसे ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई थी कि रुद्र काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो उसे इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने देगा। इसलिए वे रुद्र को देख बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सिंघानिया विला जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ इन सबको रुकने के लिए बोलो। इतना बोल वे रुद्र को एक उम्मीद के साथ देखने लगती है। वहीं रुद्र, जो अपनी रूह से अच्छे से वाकिफ था कि रूह यही करेगी, वे तुरंत अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल कर ये सब रोकने और उन लोगों को इज्जत के साथ अनाथाश्रम के अंदर भेजने को बोल देता है, जिसकी कुछ ही पल में वे पुलिस वाले उन लोगों को मारना छोड़ देते हैं और उन्हें अनाथाश्रम के अंदर जाने को बोल, कुछ डॉक्टरों को बुला, उनका इलाज करने को बोल, वहां से चले जाते हैं, जिसे देख रूही चैन की सांस लेती है। इसी के साथ रुद्र टीवी की स्क्रीन को बंद करते हुए रूही को देख बोला, रूह चलो अब जाओ, एक अच्छी बीवी की तरह तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े पहले के ही बाथरूम में रख दिए हुए हैं। इतना बोल वे लाइट को ऑन कर देता है जिसके चारों तरफ रोशनी हो जाती है, जिसे देख रूही एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर थोड़ी देर में जब वे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि रुद्र बिल्कुल उसके करीब और उसके सामने खड़ा हुआ है, जिसे देख रूही अपने कदम थोड़ा पीछे ले लेती है, जिसे देख रुद्र बोला, रूह अब तो तुम मेरे साथ रहने के लिए भी मान गई, तो अब मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। रुद्र की बात सुनकर रूही अपनी हल्की ग्रीन आंखों से रुद्र को देखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ सिंघानिया विला चलने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। रूही की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है, क्योंकि जो करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता वे उसकी रूह कर देती है। शायद उसकी रूह उसके साथ रहते रहते थोड़ी समझदार हो गई है, इसलिए रुद्र रूही के पास आ उसके चेहरे को ऊपर कर उसे प्यार से देखते हुए बोला, ठीक है रू, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है, पर एक बात याद रखना रू, उस शर्त को मानना या ना मानना मेरे ऊपर और तुम्हारी शर्त के ऊपर डिपेंड करता है। रूही रुद्र की उन खतरनाक आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देख पाती, इसलिए वे दोबारा रुद्र का हाथ अपने चेहरे से हटा, दो कदम पीछे हो अपनी नजरें इधर उधर कर फिर रुद्र को देखते हुए बोली, देखो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आने को तैयार हूँ, पर तुम बार बार मेरे यूं करीब नहीं आओगे, ना ही मुझे बार बार छूने की कोशिश करोगे, और मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड पर नहीं सोऊंगी, मैं सोफे पर सो जाऊंगी पर तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, और तुम मुझ पर बार बार किसी भी चीज पर रोक नहीं लगा सकते, मेरा जब भी कहीं भी जाने का मन करेगा मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे आजाद रहना पसंद है, ना कि किसी की कैद में। साथ ही साथ तुम मुझे कॉलेज जाने के लिए भी रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं और पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए तुम कभी भी मेरी पढ़ाई के बीच नहीं आओगे। इतना बोल रूही चुप हो जाती है। वहीं रूही की सारी बातों को सुनने के बाद रुद्र के चेहरे पर एक खतरनाक हंसी तैर उठती है और वे जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस नौकरानी ने दिशा को जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे चलते चलते दिशा एक रूम की तरफ पहुंच जाती है। फिर कुछ सोच उस रूम के दरवाजे को खोल अंदर जाती है तो देखती है कि इस रूम में लाइट चल रही है, पर यहाँ कोई दिख नहीं रहा, जिसे देख दिशा रूही को आवाज लगाते हुए बोली, रूही कहाँ है तू, अगर तू यहाँ है तो प्लीज मेरे सामने आ। इतना बोलते बोलते और रूही को ढूंढते ढूंढते वे रूम के अंदर की तरफ चली जाती है। वे अभी फिर से रूही को आवाज लगा पाती कि तभी दिशा किसी से टकरा जाती है, और जैसे ही गिरने को हुई वे सख्त दिशा को पकड़ अपनी बाहों में संभाल लेता है और एकटक दिशा को देखने लगता है। वही दिशा जो गिरने के डर की वजह से अपनी आंखों को बंद करके रखती हुई थी, जब उसे महसूस होता है कि वे गिरी नहीं है और किसी ने उसे पकड़कर रखता हुआ है, तो वे अपनी आंखें तुरंत खोल लेती है, और अपनी आंखों को खोलते ही अपने सामने देवांश को देख वे हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देवांश यहाँ क्या कर रहा है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र देवांश के खुले सीने पर चली जाती है, जो कि ठीक दिशा की आंखों के सामने था, क्योंकि देवांश ने अपनी शर्ट के चार बटन खोलकर रखते हुए थे, जिसके देवांश का खुला और मस्क्यूलर सीना साफ साफ नजर आ रहा था, जो किसी को भू अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी था।
पर यहाँ दिशा देवांश को इस तरह देख अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि दिशा ने देवांश को कभी भी उस नजरिए से देखने की कोशिश ही नहीं थी जिस नजरिए से देवांश उसे देखा करता था। इसलिए दिशा तुरंत देवांश से दूर होती है और बिना देवांश की तरफ देखे हुए कहती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दिशा की बात सुनकर देवांश उल्टा दिशा से सवाल करते हुए बोला, मिस दिशा मेरी छोड़िए, पहले आप बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप यहाँ कैसे आई। देवांश की बात सुनकर दिशा देवांश को धीरे धीरे सारी बात बता देती है कि वो यहाँ कैसे और किस लिए आई। देवांश, जिसे पहले से ही ये सब पता था, वो तो बस यूं ही दिशा से पूछ रहा था। वे दिशा की बातों को सुनने की जगह दिशा को देखने में ज्यादा बिजी था। वहीं दिशा सारी बात बताते हुए देवांश से बोली, सर उस नौकरानी ने मुझसे यहीं आने को कहा था और ये कहा था कि यहीं पर मुझे रूही और उस अनाथ आश्रम को खरीदने वाला इंसान मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन यहाँ पर तो मुझे रूही और उस इंसान की जगह आप मिले। अब आप बताइए सर, आप यहाँ कैसे? क्या आप उस इंसान को जानते हैं जिसने वे अनाथ आश्रम खरीदा?
दिशा की बात सुनकर देवांश दिशा को देख अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे देख दिशा खुश हो जाती है कि शायद अब उस अनाथ आश्रम में सबको रहने के लिए देवांश उसकी कोई मदद कर पाए। लेकिन देवांश की अगली बात सुनकर दिशा के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है।